हम सभी के बीच आदरणीय राजयोगी डबल डॉक्टर सतीश भाई जी विराजित है। दिल के हर संकल्प को बाप समान बनाने वाले, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं और गुण गाता रहूं, ऐसी सदैव स्थिति बनाकर एक बाबा दूसरा न कोई दिल में समाने वाले दिल के चिकित्सक आदरणीय भ्राता सतीश जी है। दिल से ही हम आपका बांगोर कलकत्ता में भ्राता जी मधुबन के आंगन में सभी भाई बहनों की तरफ से एक हाथ की ताली बजाकर स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दिल्ली में आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई, हृदय रोग चिकित्सा संबंधित आप अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्य हैं। सोल माइंड बॉडी मेडिसिन के नवीनतम विचारधारा के रिसर्च वर्कशॉप पर आपको 2001 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से अवार्ड मिला है। सन 2000 में यूएसए में होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। वर्तमान समय ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ट्रामा सेंटर पर आप कार्यरत है। भारत सरकार के डीआरडीओ के साथ मिलकर जिस प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम है कारोनरी हार्ट डिसीज थ्रू राजयोगी लाइफस्टाइल, जिनको हम सब और भाई साहब भी बड़े प्यार से कहते दिल वालों का ग्रुप। हाँ, बहुत से दिल वाले यहाँ भी होंगे जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बाप दादा को दिल से दिल तक प्रत्यक्ष करने की सेवा में आप सदा व्यस्त रहते हैं। क्या कहें भाई साहब के लिए, कहां जाता है, पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, विश्वास से बनता है रिश्ते और रिश्तों से बना है कोई खास, जो देते अंधेरों में साहस, दुख में भी हमें साहस, पल पल रहते हैं जो प्यारे मीठे बाबा के दिल के पास, दिल के पास। और ऐसे डॉक्टर सतीश भाई जी आज हम सभी को कर्म इंद्रिया जीत सो माया जीत इस विषय पर अनुभव कराएंगे कि हम कहां तक कर्म इंद्रिया जीत सो माया जीत बनेंगे। ऐसे भ्राता जी का पुनः स्वागत है। भ्राता सतीश गुप्ता जी,
ओम शांति। कर्म इंद्रिय जीत और माया जीत, इजी टॉपिक है, इजी है कि मुश्किल है? बड़ा ही गुह्य टॉपिक है और इस पे बहुत गुह्य चिंतन की आवश्यकता है, गहराई में जाने की आवश्यकता है। इसलिए हम एक मिनट सभी फिर दोबारा से अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु, उसकी संतान बाबा से, बाबा सातों गुणों का सागर है और मैं सातों गुणों का स्वरूप हूं, उसको फील करें, अनुभव करें, एक मिनट के लिए इसी में एकाग्र हो जाए। ओम शांति। कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें या हमारा इसका क्या है कर्मेंद्रिय जीत? सबसे पहले तो हम कहें, अगर कर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं? हाथों से कर्म करना ही कर्म है? बस जो भी हम इन कर्मेंद्रियों से करते हैं, कर्मेंद्रिया कौन कौन सी हैं? आंखें, नाक, कान, मुख और ये त्वचा भी कर्मेंद्रिय है। त्वचा है ना, देख रहे स्किन है ना, ऊपर नीचे सारी बॉडी में त्वचा है ना, स्किन है ना, ये भी कर्मेंद्रिय। हाथ पैर भी कवर उसमें आ जाते हैं ना। तो देखना भी कर्म है। देखना कर्म है कि नहीं? हमने सिर्फ देखा, हमने कुछ किया नहीं। देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, पढ़ते ना, किताब पढ़ते हैं, ये भी कर्म है। सुनना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है। बोलना कर्म है कि नहीं है? कि कर्म अलग है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, हाथ पैर से जो भी कुछ करते हैं वो भी कर्म है, किसी को चीज को छूना भी कर्म है। अगर हमने विकारों के वश किया तो काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश किया तो विकर्म बन गया हम नहीं। और अगर बाबा की श्रीमत पे किया तो श्रेष्ठ कर्म बन गया, ठीक है। और कुछ तो हमने विकर्म किए, कुछ और भी कर्म होते हैं क्या? विकर्म और श्रेष्ठ कर्म तो हो गए, और कोई कर्म भी होते हैं? अकर्म भी होते हैं, सत्युग में करते हैं जो ना, और भी कोई कर्म होते हैं? वो तो श्रेष्ठ कर्म माना शुभ कर्म अच्छी बात होगी। कोई व्यर्थ कर्म भी होते हैं ना, व्यर्थ कर्म, वेस्ट थॉट, वेस्ट थॉट्स भी तो होते हैं ना, व्यर्थ कर्म भी होते हैं, व्यर्थ विचार भी होते हैं ना? ऐसे ही जो हम करते रहते हैं, ऐसा होता नहीं होता? तो आज हम इस बात की गहराई से चलेंगे, हम विकर्म, हमसे विकर्म क्यों होते हैं और कर्मेंद्रजीत कैसे बनेंगे? कभी सोचे, सोचते हो कभी इस पे कैसे बनेंगे? क्योंकि मायाजीत बनने के लिए कर्मेंद्रजीत बनना बहुत जरूरी है। विकर्म कहां से होते हैं? कर्मेंद्र से होते हैं ना। विकर्म कहां से होते हैं? इससे होते हैं ना। माया कहां से आती है? कर्मेंद्र से आती है ना। नहीं, माया कहां से आती है? कोई चीज तभी तो आएगा विचार, कोई चीज देखेंगे तो विचार आएगा ना। अगर उसको विकार की नजर से देखेंगे तो विचार आएगा ना, तभी तो विचार आएगा। ऐसे सोते सोते ना विचार आएगा, सो रहे हैं आप, विचार आएगा, आंखें बंद करके बैठे हो, विचार आएगा। कान में एकदम बंद करके बैठ जाओ कान को, विचार नहीं आएगा। आंख नाक कान बंद करके बैठ जाओ, विचार कम हो जाएंगे ना, है ना। किंतु ज्यादातर इन पांचों कर्मेंद्रियों से ही हमारे विकर्म होते हैं। मतलब जो माया आती है वो कहां से? माया माना पांच विकार, रावण माना भी पांच विकार। तो ये माया रावण जो है पांच विकार कहां से आते हैं? कर्मेंद्र से आते हैं। जब तक हम कर्मेंद्रजीत नहीं बनेंगे तब तक हम मायाजीत नहीं बन सकते। कर्मेंद्रजीत बनने के बाद ही मायाजीत बनेंगे, है ना। तो ये विकर्म कैसे होते हैं और कैसे हम कर्मेंद्रियां क्यों नहीं हमारे अच्छे, हमारे वश में क्यों नहीं कर्मेंद्रियां? आंख कहते हैं आंख मेरी है, नाक मेरी है, कान मेरा है, मुख मेरा है, है ना, फिर मेरे वश में क्यों नहीं है? हम कर्मेंद्रजीत क्यों नहीं है? हा? क्यों नहीं है? क्या कह रहे? कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल कैसे करते हैं आप? अच्छा, किसी आपके घर में बच्चे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करते हैं बताओ? ये भी तुम्हारे बच्चे हैं ना, समझो, आत्मा के तो बच्चे ही ना। जैसे ये पांचों कर्मेंद्रिय आत्मा के बच्चे जैसे है ना, पालना करती है ना उनको, तो कैसे आपके आप अपने घर में बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं? बच्चों को सबसे प्यार ही खाली ऐसे से करते रहो बस, वो ठीक रहेगा, है ना। उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसकी चॉइस जो है उसकी पूरी करनी पड़ेगी नहीं, पानी पिलाना, दूध पिलाना पड़ेगा, वो कुछ मांगेगा उसको देना पड़ेगा, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े देने पड़ेंगे, नहलाना पड़ेगा, है ना, सब कुछ करना पड़ता है ना, बच्चे को नहलाना, खाना खिलाना, उसको अच्छी आदतें डालना, ये भी तो माँ बाप काम है ना, तभी तो बच्चे हमारे कंट्रोल में रहेंगे। अब बच्चों की ना तो हम उसको अच्छी शिक्षा दें, ना उसको हम टाइम पे खिलाएं, ना टाइम पे सुलाएं, ना टाइम पे उसकी सफाई करें, ना उसे प्रॉपर कपड़े रखें, तो क्या होगा? बच्चे हमारे कंट्रोल में रहेंगे, है ना। तो हमारे बच्चे हैं ना ये भी तो कर्मेंद्रियां। ये कर्मेंद्र को क्या चाहिए? कर्मेंद्र को क्या दिखाई, क्या होना चाहिए? आत्मा है ना, आत्मा मालिक है, और आत्मा के पास क्या चीज है जिससे कर्मेंद्रियों को वो नरिश करती रहती है? आत्मा के पास सात एनर्जी है ना, सात ऊर्जाएं हैं, जिससे आत्मा इन सातों कर्मेंद्र, पांचों कर्मेंद्र को नरिश करती है ना, पोषण करती है। एक तो ज्ञान है, ज्ञान माने समझ। क्या समझ? किस बात की समझ? क्या समझ? कि मैं देह नहीं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, ठीक है। ये जो मैं दिखाई देता हूं ये मैं नहीं हूं, ये अपने आप को ये समझ दे रहे हैं, हम आपको समझ दे रहे हैं कि मैं जो हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। ये जो सामने भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, ये सामने जो बहन जी दिखाई दे रही है, ये स्थूल देह नहीं, ये भाई या बहन नहीं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है, ये समझ। ठीक है, और मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा या सामने जो बैठी है आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भिक्टियों के मध्य और दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम, दोनों ब्रेन, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, इसका जो कंट्रोल रूम है कौन सा है, हाइपोथैलेमस। इन दोनों को ब्रेन का भी कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस के मध्य में स्थित। हाइपोथैलेमस में ऐसी सेल्स हैं जो कि जो आत्मा से एनर्जी निकलती है ना, ज्ञान, सात एनर्जी निकलती है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, इन सातों एनर्जी को वो सेंस करती है। जैसे एक ऊपर से, जैसे नर्मदा डैम है ना, नर्मदा डैम है, भाखड़ा डैम है, जहां पानी गिरता है ऊपर से, पानी तो माउंट आबू में भी गिरता है, जब बरसात होती है तो फॉल है ना, यहां पर फॉल समझते हैं ना, झरने हैं ना, तो पानी तो 500 फुट से, यहां से 500 फुट से ऊपर से भी पानी गिरता है, 600 फुट 1000 फुट से भी पानी ऊपर नीचे से गिर जाता है, ऊपर से नीचे गिरता है, तो वहां बिजली बनती है क्या? किंतु भाखड़ा डैम में 300 फुट ऊपर से पानी, 300 फुट थोड़ा ऊपर है, 300 फुट से ऊपर से पानी गिरता है और वो टर्बाइन्स के ऊपर पड़ता है, टर्बाइन्स होती है और उससे टर्बाइन चालू हो जाती है, टर्बाइन चालू होती है और टर्बाइन चालू होने से बिजली पैदा होती है, और बिजली को कहां स्टोर कर लेते हैं, डायनामो में स्टोर करते हैं, डायनामो में स्टोर करते हैं, तो उससे फिर वो हाई टेंशन वायर्स के द्वारा पावर हाउस में जाती है, हर सिटी में पावर हाउस बने होते हैं, पावर हाउस में जाती है, वहां से 22,000 वोल्ट की तारें, फिर 11,000 वोल्ट की तारें, और फिर हमारे पहले 22,000 वोल्ट के बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं, फिर उसके बाद 11,000 वोल्ट के हमारे हमारे शहर के जो पावर हाउस होते हैं, 11,000 वोल्ट की तारें आती हैं, और उससे फिर हमारे घर में 220 वोल्ट की करंट आती है। उससे क्या होता है, हमारे घर में 220 वोल्ट की करंट आई तो उससे हम क्या क्या करते हैं, पंखे चलते हैं, बल्ब जलते हैं, और एसी चलता है, कूलर चलते हैं, और हीटर चलता है, फ्रिज चलता है, और कंप्यूटर चलते हैं, प्रेस होती है, और क्या करते हैं आप, मिक्सी में आप है ना सुबह बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं, है ना, मोबाइल चार्ज करते हैं, और क्या क्या करते हैं, हैं जी, माइक्रोवेव चलता है, हॉट है ना, ओवन चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है, कितने सारे काम होते हैं ना, होते नहीं होते, टीवी चलता है, टीवी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, टीवी चलता है ना, तो कितनी सारी चीज चलती है ना, नहीं कैसे चला, आप जाके एक टीवी को वहां रख दो जहां पानी नीचे गिर रहा है ना, तो वहां चलना शुरू हो जाएगा क्या, वहां से बिजली बन रही ना तो सीधा वहीं रख दो, चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, प्रोसेस है ना उसका, या 22,000 वोल्ट की तार से सीधा जोड़ दो टीवी को तो क्या होगा, टीवी उड़ जाएगा, नहीं ऐसा होगा, है ना, उसका प्रोसेस है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे ऐसे यहां पर आत्मा से एनर्जी निकल रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, और वो वहां पर मेंटल एनर्जी में, मानसिक ऊर्जा में बदल रही है, मानसिक ऊर्जा में ना, मन में बदल रही है, उससे वो ज्ञान जो निकला ना, ज्ञान ने समझ मैं आत्मा हूं, ये जो है ये विचार पैदा हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है, ये विचार पैदा हो रहा है, ठीक है, मतलब वो जो एनर्जी थी, ज्ञान निकल रहा था, अब वो विचार बन गया, क्या बन गया, मैं आत्मा हूं, तो विचार अब मन में चार चीजें होती हैं, उसे इंग्लिश में टीम कहते हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, राइट। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कैसे हमारी कर्मेंद्रिय जीत हमें बनना है ना, तो हमें ये प्रोसेस समझना होगा तभी हम समझ पाएंगे, तो आत्मा कैसे नरिश कर रही है कर्मेंद्रिय को ना, तो वो विचार है ना, वो विचार वहां से निकलता है, ठीक है, और वो विचार जितना हम इंटेंसली करते हैं, इंटेंसिटी से करते हैं, उसको फील करते हैं, है ना, विचार फिर भावना में बदल जाता है। विचार और भावना में क्या फर्क है, क्या फर्क है, बोलो, कलकत्ता वालों को तो पता होना चाहिए, विचार और भावना में क्या फर्क है, विचार जब कोई विचार गहराई से करते हैं, जब गहराई से उस विचार को करते हैं तो भावना बन जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में मुझे विचार उठा, कोई व्यक्ति मुझे मिला उसने अलग अलग ओम शांति बोला एक दिन, फिर अगले दिन मिला, भाई जी ओम शांति, है ना, और थोड़ा प्यार से बोला है ना, फिर थोड़ी देर में फिर मिला, भाई जी ओम शांति, मुझे ना आपका एक फोटो खींचना है ना। अच्छा जी ठीक है। फिर अगली बार मिला तो एक फूल लेके आया, भाई जी मुझे आपको एक गुलाब का फूल मैं आपको दे दूं। तो तीन चार बार हुआ तो क्या हुआ, अब गहराई से मुझे सोचना पड़े, सोच उसके विचार चलेंगे ना, तो मुझे क्या हो जाएगा उसके बारे में, भावना हो जाएगी ना, उसके प्रति भावना हो जाएगी ना, उसकी मेरे प्रति भावना है कि तो मेरे मन में उसके प्रति भावना नहीं थी, कि तो अभी क्या हो गया उसके मन में, मेरे मन में तीन चार पांच बार वो मिला है ना, तो क्या हुआ भावना, उसके बारे में विचार चलने शुरू हो गए तो भावना, और दो भावना होने के बाद दो व्यक्ति के बीच में जो भावना होती है उससे वाइब्रेशन फ्लो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हजार किलोमीटर दूर बैठे हो तो भी क्या होगा, जैसे एक बच्चा और माँ है तो उसके वाइब्रेशन कितने दूर तक जाते हैं, दोनों के बीच में भावना होती है ना, तो दूर तक हजार किलोमीटर दूर तक भावना जाती है ना। और जब भावना प्रोलॉन्ग हो जाती है, वही भावना को आप लंबे समय तक रखो अपने मन में, तो क्या होगा, वो आपकी वृत्ति बन जाती है, क्या बन जाती है, वृत्ति बन जाती है। और वृत्ति जब बन जाती है, वृत्ति माना सर्कल बन गया ना, आप विचार माना एक बिंदु, भावना माना दस बिंदु, पंद्रह बिंदु, बीस बिंदु, ठीक है, वही विचार बार बार आ गया तो भावना बन गई, और वही विचार हम उसको ही लंबा करते गए, लंबा करते गए तो क्या बन गया, सर्कल बन गया, एक वृत्त बन गया ना, अब वृत्त बन गया तो क्या हुआ, अब उसमें पहला बिंदु कौन सा, आखिरी बिंदु कौन सा, सबके सब पहले बिंदु है, सबके सब आखिरी बिंदु है ना, तो आप उस सर्कल में घूम जाते हो ना, अब उससे वायुमंडल बन जाता है, क्या बन जाता है, वायुमंडल, क्योंकि जब आपकी वृत्ति माना एटीट्यूड बदलता है तभी आप कर्म करते हो, संकल्प खाली आने से कर्म, कोई कर्म नहीं करता है, भावना आने के बाद भी कर्म नहीं करते हैं, कोई आपको व्यक्ति तीन बार मिला, ओम शांति क्या भाई साहब मुझे 10,000 रुपए दे दो ना, आप मैंने 10,000 रुपए निकाले उसको दे दिए, ऐसा है क्या, भावना में आके 10,000 रुपए कहेंगे तुम पागल थे क्या, तुमने 10,000 रुपए दिए उसको, मेरी बात समझी आपने, कई लोग भावना में आके काम करते हैं ना, कहते हैं उसे क्या कहते हैं, उनको समझदार नहीं कहते ना, कि तो जब मैं उससे, मेरा उससे बहुत समय का संबंध हो गया, बहुत समय की मेरी उससे वो मिलना जुलना हो गया, मेरी वृत्ति बन गई, नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है ना, कैसा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो अब मेरा एक्शन में कर सकता हूं उसके साथ, ठीक है, मेरा एटीट्यूड बदल गया उसके प्रति, अभी वो जो कहे मैं उसके अनुसार कर्म कर सकता हूं, एटीट्यूड बदलने के बाद हम कर्म करते हैं, ठीक है, बिना एटीट्यूड बदले हम कर्म नहीं करते हैं, हमारे जब तक वृत्ति ना बदले उसके प्रति, वृत्ति से दृष्टि बनती है ना, फिर जैसी वृत्ति होगी मुझे वही नजर आएगा, मेरी वृत्ति में वो आदमी बहुत अच्छा है, वो बहन जी बहुत अच्छी है, फिर बहन जी जो कहेंगे मैं कर दूंगा, ठीक है, मेरी वृत्ति बन गई ना, अभी वो भाई साहब बहुत अच्छे हैं तो भाई साहब जो कहेंगे मैं कर दूंगा, ठीक है, तो वो वातावरण वायुमंडल बन जाता है उस व्यक्ति के आसपास, उसमें आप फिर वो कर्म कर लेते हैं, अगर एक बार किया तो वो कर्म उस क्या कहलाता है, वो इंप्रेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, इंप्रेशन कहलाता है, और वो ही कर्म हम अगर वो कर्म हमने एक बार किया और उससे फायदा हो गया या नुकसान हो गया तो क्या बन क्या कहलाता है वो, वो नुकसान हो गया, इंप्रेशन माने एक इंप्रेशन बन गया कि ऐसे कर्म करने से ऐसा होता है, ठीक है, अभी मान लीजिए मैंने कर्म तो कर लिया, नुकसान हो गया, अब मैंने एक दूसरे से शेयर किया कि मैंने वो किया, इससे तो बहुत नुकसान हो गया, मैं जा रहा था रास्ते से बिल्ली आई एक रास्ता काट गई, तो मेरे को इंप्रेशन तो पड़ा कि मम्मी कहती है काम खराब होता है बिल्ली से, बिल्ली रास्ता काटे तो, है ना, इंप्रेशन तो था क्योंकि पहले बिल्ली गई तो मैंने मन में तो आया, तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, बिल्ली पता नहीं चूहा खाने जा रही थी, शायद मैं ही उसके रास्ते में आ गया, है ना, तो मैं परवाह नहीं करता क्योंकि मेरा काम खराब हो गया, अब घर पे वापस आया, बोला मैंने मम्मी को, बोला मम्मी मेरा ना मैं गया था रास्ते में बिल्ली का वो काम आज हुआ ही नहीं, क्या बात है बेटा कैसे क्यों नहीं हुआ, अरे वो ना रास्ते में ना बिल्ली रास्ता काट गई, आप कहते हैं बिल्ली रास्ता काट, हाँ मैंने तो कहा था पहले तुझे बैठ जाना चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था आगे, थोड़ी देर बैठ जाता था ना काम ठीक हो जाता था, फिर किसी और को, अच्छा फिर किसी और ने कहा, किसी और को उसने सुनाया कि आज क्या अच्छा काम नहीं हुआ, काम कैसे होता, बिल्ली रास्ता घर से बाहर निकलते बिल्ली रास्ता काट गई थी, है ना, उसने कहा काम तो खराब होना ही था, तो चार पांच लोग ने री एनफोर्स कर दिया तो क्या बन गया, बिलीफ सिस्टम बन गया, नहीं बन गया, बिलीफ बन गया ना। अब जब भी रास्ता काटेगी बिल्ली तो क्या होगा, मैं काम करने जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा, नहीं ऐसा, किसी ने छींक मारी मैं निकला तो फिर क्या होगा, कहते छींक मारने से काम खराब हो जाता है ना, निकलते हैं तो ना, ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बन जाते, नहीं बन जाते, कई लोग रीइन्फोर्स कर देते हैं ना, उसका मुंह देखा काम खराब हो गया है ना, सबसे पहले किसका मुंह देखता है आदमी उठ के, अपना मुंह देखता है ना, तो अपना मुंह देखने से काम खराब हो गया ना, नहीं कि उसका मुंह देखने से काम खराब हुआ, तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं ना, तो ये बिलीफ सिस्टम हमारे बन गए है ना, और वही चीज को जब बार बार करते हैं, बार बार करते हैं तो क्या होता है, हमारा हमारा संस्कार आदत बन जाती है, और आदत बनने के बाद परवश हो जाते हैं। ये कर्मेंद्रियां 63 जन्म से, जब से हमारे अंदर देहभिमान आया तब से हमारे अंदर, हमें कोई चीज को देखा सबसे पहले हम देह देखी, द्वापरिक शुरू होते द्वापर, हम सत्युग देवता में देह नहीं देखते थे, हम देह के आसपास जो आभा मंडल था ना, ज्ञान गुण आभा मंडल क्या होता है, ये वायुमंडल बताया ना मैंने, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, जो आभा मंडल है, आभा मंडल में क्या होता है, ये जो सातों एनर्जी है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां, ये सातों एनर्जी से आभा मंडल बनता है। जब आत्मा में सातों चीजें भरपूर रहती हैं तो वो एनर्जी आसपास इकट्ठी होती रहती है, सत्युग में वो बहुत ज्यादा होती है, तो हम एक दूसरे के आभा मंडल को देख के ही विभूत रहते हैं, हमारा व्यवहार गुणों में व्यवहार होता है, देह में नजर नहीं आती है, देह में नजर नहीं आती एक दूसरे की, जैसे जैसे सत्युग बीतता है, त्रेता बीतता है, आभा मंडल कम होता जाता है, 16 कला से 14 कला, पहले 16 होते हैं, 16 सीधे 14 नहीं होते, 16 से पहले 15 होते हैं, फिर 14 होते हैं, फिर 13 होते हैं, फिर 14 होते हैं, 13 के बाद 12 होते हैं, 12 के बाद 11 होते हैं, 11 के बाद 10 होते हैं, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, जब 8 कला रह जाती तो क्या होता है, एनर्जी हमारा आभा मंडल कहां पहुंच जाता है, स्किन के लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो स्किन के लेवल पहुंचा तो अब शक्ल नजर आनी शुरू होती है, शक्ल दिखाई देती है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी हैं, उनके नैन नक्श दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पहले नैन नक्श नजर नहीं आते थे, मेल फीमेल के या किसी के भी, सुंदर या ना कम सुंदर, इसलिए देवताओं को सबको एक जैसा दिखाते हैं, गोल गोल चेहरा, नहीं है ना, बिना दाढ़ी मूछ का, दाढ़ी मूछ होती नहीं देवताओं को, सातों गुणों में व्यवहार करते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं, मां विकार है ही नहीं कोई काम करो तुम, किंतु जैसे ही हमारे अंदर ये देखते हैं पहली बार, हम देह को देखते हैं, ठीक है, देह को देखते क्या होता है, उसके हाव भाव नजर आने लगते हैं ना, हाव भाव नजर आने, आंखों के इशारे, चेहरे का भाव भंगिमा, नैन नक्श है ना, वो हम देखने लगते हैं, उसकी तरफ नजर जाने लगती है, और वो उससे उसमें भावना बैठती है, फिर हमारी भावना, अभी हमारी थी स्पिरिचुअल भावना है, सत्युग में कैसी भावना थी हमारी, आत्मिक विचार थे, आत्मिक भावनाएं थी, आत्मिक वृत्ति थी, और आत्मिक इंप्रेशन थे, और आत्मिक क्या था, बिलीफ सिस्टम थे, और आत्मिक आदतें थी, संस्कार थे। अभी क्या हो गया, पहली बार क्या हुआ, देह को देखा तो देह के विचार चले, देह की भावना आई, अच्छा बुरे की भावना आई, ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, पहले कोई ये नहीं था, ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, सब एक जैसे थे, भेदभाव नहीं था, छोटे बड़े का भी नहीं था, तो हर एक का एक ही भाव था, इसलिए एक धर्म था, एक राज्य थी, एक भाषा थी, राइट। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो हमने देह के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट तो होंगे, तो वो हमें देह के हिसाब से वो व्यक्ति हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, कोई कम अच्छा लगा, कैसे लगा, तो उसके अनुसार हमारे देह की हमारे अंदर पहले विचार आए, फिर देह की भावना आई, और देह की भावना आते आते क्या हुआ, देहिक वृत्ति बन गई, क्या बन गई, देह की वृत्ति बन गई, ठीक है, देह की वृत्ति बनने के बाद देहिक इंप्रेशन बन गए, अब उनसे एक्ट में आए, अरे वो तो इतने अच्छे हैं, इतना बढ़िया खाना बनाते, बात मत पूछो, उसके हाथ का ही खाना अच्छा लगता है, सत्युग में ऐसा नहीं था कि उसके हाथ का ही खाना अच्छा लगता है, कौन से दास दासी ने बना के लाया खाना खाया, इच्छा ही नहीं है ना, सब प्राप्ति संपन्न है, थोड़ा से भोग लगाते ना, आपने देखा देवताओं कितना भोग लगाते हैं, याद है मंगलवार का भोग लगाते थे ना पहले हम लोग, मंगलवार को वो होता ना गोल 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 होता है, गुलदाना कहते थे उसको, बूंदी, और साथ में एक बर्फी डालता था हलवाई ना, हम छोटे बच्चे तब की बात बता रहा हूँ। तो हमने भोग लगाया मूर्ति को, एक एक वो लगाया थोड़ा सा, इतना सा वो बर्फी लगाई और बाकी दो दो दाने सबको बांटे, बाकी सारा मेरा। नहीं ऐसा होता था, नहीं होता था है ना? तो मतलब वो तब ऐसी थी ना, तो ऐसा ही जो है, हम जब हमारी देहिक वृत्ति हुई तो हमारी देहिक इंप्रेशंस हो गए, देहिक बिलीफ सिस्टम्स हो गए, फिर हम देखने लगे इसके साथ इसकी शक्ल देखी तो आम हो गया, इसकी शक्ल देखी काम खराब हो गया, इसका ऐसा हुआ इसका ऐसा हो गया, राइट, ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए बुरा है, मंगलवार अच्छा है बुधवार में मेरा काम खराब होता है, शनिवार को काम खराब हो जाता है ना, मेरे लिए ये दिन अच्छा है, फिर शनिवार की दशा और शुक्रवार माता जी की नाराज होती, ये नाराज होता, वो हनुमान जी नाराज होते, बाल कटवाना हनुमान के मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, अरे हनुमान को कोई काम नहीं रहा कि वो मेरे बाल ही देखता रहता है कि बाल कब कटवाता है। तो आप सोचो मतलब हनुमान जी का खाली बैठे हो मेरे बाल की चिंता रखते हैं ना, तो मतलब बेसिकली हम लोग ना इसी बातों में फंस गए ना, तो ऐसे फिर हमारी वृत्तियां हमारे ना इंप्रेशन बिलीफ सिस्टम बनने शुरू हुए, देहिक बिलीफ सिस्टम बनने शुरू हो गए, और फिर देहिक स्मृतियां स्मृतियां वो बन गई, क्या कहते हैं हमारे आदतें बनते चले गए, ठीक है। अब जब भी हम कोई आदत बनाते हैं, मान लीजिए मैंने क्रोध, अब मेरे को क्रोध आने लगा, क्रोध करना शुरू कर दिया, हमारी मसल्स होती है ना यहाँ पर चेहरे पे, मसल्स होती हैं, हर चीज में मसल्स यूज होती हैं, अब मैंने बार बार क्रोध करता हूं तो क्या होता है, मेरी क्रोध की मसल्स ना स्ट्रांग हो जाएंगी, ये मसल ना चेहरे पे क्रोध की मसल्स वो स्ट्रांग हो जाएंगी, तो मैं क्रोध नहीं भी करूंगा तो ऐसे लगेगा जैसे क्रोध कर रहा है, क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि वो मसल स्ट्रांग होगी ना, अब क्रोध दिखाई देगा चेहरे पे बिना क्रोध किए भी। कोई उदास रहने लगा, उदास रहते तो उदासी की मसल्स होती हैं चेहरे पे ना, वो मसल्स एक्टिव हो गई, वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, तो क्या होगा, मैं अच्छा भला अच्छा सोच रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मुस्कुराने की, पर वो चेहरे उदासी ही है, राइट। किसी को किसे नफरत है, ईर्ष्या द्वेष है, तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या द्वेष वाला चेहरा बन जाएगा, ऐसा होता नहीं होता है, बस जैसा हम करते हैं ना, फिर ऐसे किसी को माना मीठा खाने की आदत पड़ गई तो टेस्ट बड्स होती है, मीठे वाली टेस्ट बड डेवलप हो गई, अब उसको मीठा चाहिए, चटपटा खाने की आदत पड़ी चटपटे वाली टेस्ट बड डेवलप हो गई, अब चटपटा उसको चाहिए, वही आदत पड़ गई ना फिर, राइट। ऐसे ही हमारे हर विकार की आदत, हमारी हर कर्मेंद्री वो फिर डेवलप हो जाती, उसी हिसाब से डेवलप हो गई, अब वो कर्मेंद्रियों को आदत पड़ गई उस तरह का काम करने की, वो चीज मांगती हैं, जैसे आप बच्चे को वो शुरू कर दो खिलाना, क्या बोलते हैं बच्चे, क्या मांगते हैं ज्यादा चीज, छोटे बच्चे चिप्स, अंकल चिप्स ना, है ना, वो चिप्स मांगते हैं, कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं, आप उनको दूध पिलाओ दूध नहीं पियेंगे, चिप्स चाहिए उनको, चॉकलेट चाहिए, है ना, चिप्स चॉकलेट खाएंगे दूध नहीं पियेंगे, नहीं ऐसा होता, आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं ना दुनिया में, अभी तो पता नहीं लेटेस्ट बच्चे, मुझे पता नहीं 30 साल पहले के बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी आजकल तो मुझे बच्चे पता है 30 साल से पता ही नहीं बच्चे कैसे करते क्या करते हैं, 21 साल से तो हम यही मधुबन में हैं, तो ज्यादा लेन देन कुछ किसी से बातचीत नहीं होती है, पर मतलब पहले ऐसा होता था 30 साल पहले ना, आजकल पता नहीं क्या होता है ना, ऐसा ही होता है, चॉकलेट मांगते हैं आजकल के बच्चे, हैं जी क्या मांगते हैं, चाउमीन मांगते हैं, पिज्जा मांगते होंगे, तो मतलब ये जो है आज ये तुम्हारी आदतें ऐसी बनी हैं, कर्मेंद्रियां इसके वश हो गई हैं, जीभ के वश हो गई हैं, है ना, आंखें भी वो टीवी देखना है वही उसी की चीज देखनी है, वही सीरियल देखना है, उसके वश हो गई हैं, मन तो वश हुआ ही है किंतु आंखें भी वश हो गई हैं, कान भी वश हो गए, उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है, वो बोलते हैं ना उनसे टेलीफोन, अच्छा कुछ और काम नहीं बैठ के टेलीफोन करना शुरू कर देंगे, अरे तुम भगवान को याद करो नहीं टेलीफोन बात, कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाना खाया, क्या बना था खाने में, अरे भाई जो उसने खा लिया तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुम्हें उसने खाना खा लिया, खाना खाना था खा लिया तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी क्या खाया नहीं खाया उसको क्या पूछने का है, ऐसा थोड़ा मुझे ईमेल कर देना खाना या मुझे फैक्स कर देना, ऐसे खाना फैक्स कराना है क्या, तो बता हमारी जो ऐसे ही हम लोग फिर वो हमारी आदत उसकी उससे बातें करते, बेकार फिजूल बातें करते रहेंगे, पर उसकी आवाज अच्छी लगती है ना, उसकी आवाज सुन के अच्छा लगता है, तो ये भी आदत पड़ गई ना। तो कर्मेंद्र जीत हमारी ये आदतें पड़ चुकी हैं। प्रोसेस क्या है इसका ठीक करने का? हमारी दैहिक आदतें पड़ चुकी हैं, दैहिक बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं, दैहिक क्या बन गए, इंप्रेशन बन चुके हैं, और उसमें खोए हुए हैं, उसी की आदत पड़ी हुई। अब क्या करें? आत्मा क्या तीन शक्तियां ना, मन बुद्धि संस्कार। तो बुद्धि जो है, बुद्धि जैसे बाबा ने पीछे कहा था, बुद्धि दिल, बुद्धि में बुद्धि अर्थात दिल है ना। तो बुद्धि में भी चार बातें हैं, बुद्धि में भी चार एस्पेक्ट हैं। पहली बात दिल है, दिल माना कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस है, और फिर हमारा विवेक है, फिर बुद्धि, फिर हमारी निर्णय शक्ति है, और फिर हमारा चित्त है। तो चार बातें, चार एस्पेक्ट हैं बुद्धि के, उसके आधार पे फिर आगे हम आगे चलेंगे, कैसे हम कर्मेंद्र जीत बने या माया जीत बने। तो पहला है क्या है, दिल, राइट। दिल में क्या होता है, दिल में ये सात एनर्जी भरी होती है, आत्मा से, आत्मा एक बिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, उससे सात एनर्जी उसमें भरी हुई है, सत्युग में भरी होती है। सत्तो प्रधान का शब्द कहां से आया, सत्तो माना सात, प्रधान माना भरपूर। आत्मा सत्युग में सत्तो प्रधान पावन है, पावन एक स्थिति का नाम है। जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर होती है तो उसे पावन स्थिति कहते हैं, वो पावन कहलाता है। जब तमो प्रधान माना, ये जब आत्मा में सातों गुण लगभग ना के बराबर रह जाते हैं, तमो माना अंधेरा, जब सातों गुण ना के बराबर रह जाते हैं तो आत्मा पतित कहलाती है। पतित भी एक स्थिति है जिसमें ना तो ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना रूहानी प्रेम है, ना अतीन्द्रिय सुख है, ना आनंद है, ना शक्तियां, ठीक है। जब सातों गुणों में भरपूर है, सतो प्रधान है। तो जब आत्मा सात गुणों में भरपूर थी तो क्या था, दिल जो है हमारा, कॉन्शियसनेस हमारी कैसी थी, सातों गुणों से भरपूर थी, और उसके आधार पर विवेक माना परखने की शक्ति। जब हमारे अंदर ज्ञान समझ भरपूर थी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, आत्मा परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव की संतान। फिर सी, एबीसीडी कहते हैं ज्ञान को, सार रूप में एबीसीडी कहते हैं, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन का संबंध, मुझ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा के सरल संबंध, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा के साथ। और जो शिव बाबा हैं वो ब्रह्मा के द्वारा मुझे सर्व संबंध की पालना और प्यार देते हैं। हर संबंध ब्रह्मा बाबा के द्वारा होता है, शिव बाबा डायरेक्ट हमसे कोई संबंध नहीं निभाते हैं। किसके द्वारा निभाते हैं, चाहे माँ का संबंध हो, चाहे बाप का संबंध, नौ मुख्य संबंध बाबा से हमारे होते हैं। वैसे तो सारे संबंध है, किंतु नौ मुख्य संबंधों का अनुभूति हम सबको होनी चाहिए बहुत गहराई से। पहला संबंध है माँ का संबंध, दूसरा है बाप का संबंध, तीसरा है टीचर का संबंध, चौथा है सतगुरु का संबंध, पांचवा बंधु माना बड़ा भाई, सखा, दादा जिसे कहते हैं बंगाली लोग है ना, सखा दोस्त, और फिर साजन, फिर सर्जन, और फिर बच्चा। नौ संबंधों की अनुभूति बहुत गहरी होनी चाहिए हरेक को, राइट। और फिर डी फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, इस नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है। हर आत्मा इस ड्रामा में, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, कर्म के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। कर्मों का हिसाब किताब, जब हम बात करते हैं कर्मों का हिसाब किताब का क्या मतलब है, कर्मों के हिसाब किताब का मतलब है कि आज आपने 100 साल पहले किसी से 500,000 रुपए उधार लिया था, ठीक है, वो व्यक्ति आपका बच्चा बन के आ गया इस जन्म में, ठीक है। 100 साल के बाद वो कहता मेरा 5,000 रुपए मुझे वापस करो, 1,000 रुपए तो वापस कर दिया, पर हिसाब किताब में ब्याज के साथ वापस करो, ब्याज कितना हो गया 1,000 रुपए का 100 साल के बाद। मैंने एक बार हिसाब लगवाया था, अब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है नीचे शांतिवन में, उसको मैंने बताओ 1,000 रुपए का कितना 100 साल के बाद कितना हुआ, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के बताया 52,48,00,000 रुपया। कितना हो गया 52,48,00,000 रुपया। तो 1,000 रुपया लिया था आपने, वापस नहीं किया, दोस्त था आपका है ना, वो मर गया, आप मर गए, आप शरीर छोड़ दिया, बिना दिए मर गए, अब वही व्यक्ति आपका बच्चा बन के आ गया, अब कितना देना पड़ेगा उसको, 52,48,00,000 प्लस 1,000 रुपया, ठीक है? क्या समझे? कितने दिन में देते जाओगे? कितने दिन में दे दोगे, पूरा करोगे? कितने दिन में दोगे? देखो, बच्चे को आप सब कुछ देते हो, बच्चा संतुष्ट नहीं होता, कहता तो पापा कुछ नहीं करते, आपने आपको तो अकल ही नहीं है ना। देखो उसके पापा तो कितने पैसे कमाते हैं, आप तो कुछ भी नहीं करते हो, हमारे लिए मेरा तो जीवन ही खराब हो गया आपके यहाँ पैदा होकर। अपना सब कुछ लगा रहे हो, खाना पीना सब आप कम से कम अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, ना के बराबर सारा उसको दे देते हो, तो भी खुश नहीं रहता। क्यों खुश नहीं रहता? क्योंकि आपने उससे 1,000 रुपया उधार लिया था और ब्याज 52,00,000 हो गया। सारी उम्र अपने आप को बेच भी दो तो भी वापस नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसे ही कोई किसी ने किसी को गाली दी थी आपने 100 साल पहले, कितनी हो गई वो 100 साल के बाद? सोचो जरा, है ना? किसी से मिसबिहेव किया था, किसी को दुख दिया था, कितना हो गया? 100 साल का ब्याज लगा दो उसके साथ। इसलिए कहते 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो प्यार ऐसा होता है, ठीक है? आज भी है और कल भी रहेगा, मतलब जन्म जन्म कर्जा चुकाते रहेंगे, ठीक है? पर कर्जा पूरा नहीं होगा, है ना? कर्जा पूरा होगा क्या? इस जन्म में कुछ बड़कर कर दी तो क्या होगा? अगले जन्म में कुछ चुकाना पड़ेगा ना? क्योंकि ये आखिरी जन्म है, अभी ये आखिरी जन्म है, ठीक? इसलिए जन्म में बहुत ज्यादा चुकाना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? तो ये जो है हिसाब किताब है हमारा, है ना? तो इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है, अच्छा, फिर बाबा शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दिया है, अभी तक दे रहा है और देता रहेगा। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ, क्या हुआ है? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? किसने मुझे धोखा दिया, अच्छा हुआ बुरा हुआ? मेरे पैसे लूट लिए, 10,00,000 रुपए लिए थे वापिस ही नहीं किए, अच्छा हुआ बुरा हुआ? जब मिलता है गाली देता है, अच्छा होता है कि बुरा? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? मैं सेवा करता रहता हूं तो भी सामने वाला उल्टा सीधा बोलता रहता है, मैं क्रिटिसाइज करता रहता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा, अच्छा हुआ ना? अब आगे से मत बोलना है बुरा हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। सारे विचार यहीं से आ रहे हैं, सारी नेगेटिव बीमारी सब यहीं से आ रही है। हार्ट की बीमारी कहो, डायबिटीज कहो, ब्लड प्रेशर कहो, सिर्फ माइग्रेन कहो, एसिडिटी कहो, हड्डी का दर्द कहो, घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, पेट में कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं होता, गैस बहुत बनती है ना, सब इसी से हो रहा है। मेरे साथ हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ, मैं उसको माफ नहीं कर सकती, मेरा जीवन खराब कर दिया उसने। आगे से बोलेंगे, सोचना भी मत, है ना? ठीक है, सोचना भी मत, है? सोचोगे क्या? जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब बाबा हर संबंध से मेरे साथ है। बाबा क्या है? सर्व संबंध से मेरे साथ है। किस किस में साथ है? हर सेकंड मेरे साथ है, हर संकल्प में मेरे साथ है, हर बोल में मेरे साथ है, हर श्वास में मेरे साथ है, हर कर्म में मेरे साथ है। वो सर्व संबंध से साथ है, एक संबंध से नहीं है, सर्व संबंध से साथ, ठीक है? तो जब आप और जो होने वाला है, क्या होने वाला है? उस सबसे अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है? निरोगी काया होगी, है ना? क्या होगा? निरोगी काया हो, यशस्वी जीवन होगा, धन धान्य संपन्न होगा, सोने हीरे जवाहरात के महल होंगे, डॉक्टर होंगे नहीं, वकील होंगे नहीं, कोर्ट होंगे नहीं, गर्मी सर्दी होगी नहीं, एसी की आवश्यकता नहीं होगी, फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है? कितने साल ठीक ठाक रहेंगे हम? कम से कम 4,500 साल तो ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है? कितने साल? 4,500 साल तो ठीक ठाक रहेंगे। 4,500 क्या? 4,900 साल ठीक ठाक रहेंगे। आखिरी में 50 साल 60 साल गड़बड़ होगी और तभी बाबा मिल जाएगा, नहीं? ऐसा ही होगा ना? तो हम लोग ठीक ही रहने वाले, पूरा कल्प ही ठीक रहने वाले। इस जन्म में भी अच्छे थे ना, बुरे तो नहीं थे ना? तो बाबा ने हमको ये जीता, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। इसी को बार बार अंदर मन में रिवाइज करते रहो, बार बार रियलाइज। जैसे आज की मुरली है, बाबा क्या बोल रहा है? नूरे रतन, जिनको सारी दुनिया याद करती है, उसको वो किसको याद करता है? वो हमको याद करता है। हम कौन हो गए? कौन बड़ा हुआ? बच्चे बड़े हुए कि बाप बड़ा हुआ? हम बाबा के नैनों के नूर हैं। कई बार मैं सोचता हूं अगर मैं बाबा के नैनों का नूर हूं, रोशनी हूं, तो अगर मेरे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया तो बाबा की तो दिखाई नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि मैं मिट्टी आ गई ना, और मैं बाबा का नजर हूं, तो फिर क्या होगा? बाबा को दिखाई नहीं देगा, फिर रियल नजर नहीं आएगा। तो मेरे को साफ रहना है, ठीक है? साफ रहना माना सोल कॉन्शियस बन के रहना, ठीक है? समझ में? तो जितना इसको रिवाइज और रियलाइज करते जाते उतना मेरी मन और बुद्धि पवित्र होती जाती। पवित्रता वो जितना आप जब आप इसको गहराई से, ये जो ये विचार है जो बाबा ने हमें समझ दी, ABCD की समझ दी, जैसे आज की मुरली है, इस मुरली को जितना आप रिवाइज करोगे, बार बार मनन करोगे, मैंने कहा इंटेंस थॉट्स बिकम्स इमोशंस। जब ये हमारी भावना में आ जाना चाहिए, ये मुरली जो है ना आज की जैसे मुरली है, ये हमारी किस में आनी चाहिए? एक एक लाइन बाबा की मुरली किस में आनी चाहिए? हमारी भावना में आ जानी चाहिए, इंटेंस हो जानी चाहिए, गहराई। एक एक मुरली का जब लाइन हमारी गहराई में चले जाओगे ना, तो हमारा हमारे अंदर भावना इमोशनल चेंज आ जाएगा, और जब इमोशनल चेंज आएगा तो क्या होगा? जब इमोशनल चेंज आएगा और उसको फिर लंबा समय करो, प्रोलॉन्ग कर दो, प्रोलॉन्ग करो तो क्या हो जाएगा? हमारी वृत्ति बन जाएगी। फिर ऐसी हमारी वृत्ति जो बाबा कहते ना, ज्ञान सूर्य तुम हो, मैं ज्ञान सूर्य हूं, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो फिर हम मास्टर ज्ञान सूर्य की जैसे मेरी एटीट्यूड ही बन जाएगा कि मेरे से जो निकलती है शक्ति किरने निकल रही है, शक्ति है ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियां हैं। ये जो आसपास जितने भी विकर्म के मतलब जो मेरे हैं विकर्म, और जो मेरी कर्म इंद्रियां हैं जिनमें विकर्म भर गए, और जो भी मेरे सामने आत्माएं आती हैं उनके विकर्म भी खत्म होते जा रहे हैं, कमी कमजोरी भस्म होती जा रही है, राइट? जैसे सूरज के सामने क्या होता है, वहां कोई कमी कमजोरी मच्छर मक्खी रह सकते हैं क्या? धूप में देखो एक भी मक्खी नहीं मिलेगी, एक भी मच्छर नहीं मिलेगा, मिलेगा मच्छर छाया में मिलेगा, है ना? तो ऐसे धूप होगी तो क्या होगा? ना कोई भी विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ ही नहीं सकता है, राइट? तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमारी वृत्ति बड़ी, वृत्ति के हिसाब से भी कर्म होंगे, तो वृत्ति मेरी बन जाएगी इस मुरली के हिसाब से, आज की मुरली के हिसाब से, और फिर वैसे मेरे इंप्रेशन होंगे और फिर वैसे मेरे नए बिलीफ सिस्टम बनेंगे, नई बिलीफ सिस्टम बनेंगे, फिर नई आदतें बनेंगी, नए पर्सनलिटी ट्रेट्स बन जाएंगे, और कर्मेंद्रियों में अब क्या आएगा, मेरी चमक आ जाएगी। क्या चमक आ जाएगी? अब मुस्कुराने वाली जो मसल्स है ना वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है? अभी कौन सी वाली मसल्स एक्टिव थी? गुस्सा करने वाली, उदासी वाली, नहीं तो चेहरे पर उदासी या कभी क्या था, गुस्सा, है ना? अभी क्या होगा? मैं अब देखो जब आप मेडिटेशन करते सब मुस्कुराने लगते हो, क्यों मुस्कुराने लगते हो? मुझे याद है जब 86 में पहली बार जब मैं आया ना शिलवन इसी कमरे में, यहीं पे शिविर चल रहा था, तो मैं अकेला डॉक्टर था, 40 लोग थे हमारे शिविर में, तो मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता रहा, पहली क्लास से लेकर के ना, तो मैंने कहा अभी ये तो क्या बात है, पढ़ाई क्या बड़ी बात है, ये तो स्पिरिचुअल पढ़ाई, ये तो अभी तो मैं पक्की कर ली मैंने, वो बहन जी बता रही थी, मैं नोट भी करता जाता था, फिर मैं बाबा वो शिलवन यहाँ पे मेडिटेशन कराती थी तो मुस्कुराती थी मेडिटेशन में, तो मैं तो देखता मेरे, तो मैं तो मुस्कुराता नहीं हूं, फिर मैं साथ वाले को देखता वो भी मुस्कुराता था थोड़ा, इधर वाले को देखता वो भी मुस्कुराता था, पीछे वाले को देखता वो भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा, मैं ही नहीं मुस्कुरा रहा हूं, तो मेरे को टेंशन होती थी, मैंने कहा बाकी सब मुस्कुराते हैं, चलो शिलू बहन चलो उसे तो जानबूझ के मुस्कुराती हो, है ना, क्योंकि वो टीचर है ना, हमको जैसे दिखाने के लिए मुस्कुराती हो, किंतु पर ये क्यों मुस्कुरा रहे, ये तो मेरे जैसे नए नए हैं। सचमुच में जब आप अपने स्वस्थिति में टिकते हो तो आपकी नेचुरल स्थिति है मुस्कुराने की, स्माइलिंग है, वो मुझे पता नहीं था तो मेरे को टेंशन होती थी उसके सबकी मुस्कुराहट देख करके, तो नेचुरल जब मुस्कुराते ना, तो आप जितने देर मेडिटेशन करते रहोगे क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका चेहरा कैसा हो जाएगा, मुस्कुराने वाला, ये मसल्स आपकी पावरफुल हो जाएंगे ना, तो फिर मसल्स अनेचुरली आपका चेहरा कैसा हो जाएगा, सदा मुस्कुराता हो, सदा खिला हुआ गुलाब जैसे, राइट? ऐसे ही आपकी आंखों को देखने की आदत है, अभी आंखों कौन सी आदत पड़ती जाएगी, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, है ना, तो वैसी दृष्टि बनती जाएगी आपकी। अब आत्मा क्या है, आत्मा जब अंदर पूरी भर जाएगी इस भाव से तो क्या होगा, फिर सचमुच में बाबा ने कहा ना अभी पीछे की मुरली थी ना, लास्ट संडे की मुरली थी, सचमुच में आत्मा ही नहीं कि आत्मा ऐसे आत्मा दिखाई, आत्मा ही दिखाई देगी, दिव्य दृष्टि से नहीं, ऐसे ही दिखाई देगी, आत्मा और बाप दिखाई देगा, प्रैक्टिकली दिखाई देगा, क्योंकि मेरे को मेरी जो वृत्ति में होता है वही दिखाई देता है। देखो मेरे को कोई व्यक्ति कह दे ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, चाहे वो बदमाश आदमी है ना, वो गलत काम करेगा तो भी नहीं, आदमी तो बहुत अच्छा है ना, मतलब मेरे मन में वृत्ति बदल गई तो मैं उसको उसके गलत काम में मुझे अच्छे दिखाई देंगे, और अगर मेरी वृत्ति उसके किसी के बाद अच्छे आदमी के बारे में खराब हो तो क्या हो जाए, तो क्या मेरा बार बार भर भर के मुझे आदमी बहुत खराब है, आदमी बहुत खराब है, ऊपर से अच्छा करता है अंदर से बहुत खराब है, वो कोई कहेगा नहीं ये भाई साहब ना बाहर से बहुत गुस्सा कर, अंदर से बहुत अच्छे, अंदर से बहुत अच्छे, हाँ ठीक है अंदर से तो बहुत अच्छे हैं पर बाहर से जरूर थोड़ा गर्म दिमाग गर्म दिखाई देता है, अंदर से बहुत अच्छे हैं, किंतु ऐसा ये व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता पर अंदर से बहुत खराब है, अंदर से बहुत खराब है, तो क्या हुआ, अब मेरी आंखें उसमें खराबी देख रही हैं, नहीं ऐसा, तो मेरी वृत्ति से जब मैं देखूंगा, मैं आत्मिक वृत्ति से देखूंगा मुझे तब आत्मा ही दिखाई देगी, राइट, सबके गुण ही दिखाई देंगे, तो मेरी आंखों से भी मेरी वृत्ति बदल गई ना, आंखें बदल गई, कान बदल गए, चेहरे का फेस चेहरा बदल गया, राइट, तो मेरा ऑटोमेटिक सब कुछ बदल जाएगा, मेरी टेस्ट बड बदल गई, अब मुझे खाना बाबा कहता है बच्चे तुम सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, शुद्ध माना बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाना है, ठीक है, सात्विक माना सात गुणों को बढ़ाने वाला भोजन खाना है, फल सब्जी अंकुरित दलिया सब्जी रोटी यही खाना और कुछ खाना नहीं। अब मैं बाहर रहता हूं हॉस्टल में, मतलब मैं मालूम किसी अस्पताल में काम करता हूं, वहां मेरे को खाना, मैं तो परिवार अकेला अकेला हूं तो क्या करूं, अब क्या करूं, मैं खिचड़ी बना लेता हूं सुबह, तीन टाइम वही खिचड़ी खा लेता हूं, है ना, अब वो क्या है मेरे को वही खिचड़ी अच्छी लगती है ना, क्योंकि मेरे को उसी में शुद्ध, वही शुद्ध है, बाबा की याद में बनाई, बाबा की याद में खाता हूं, तो मुझे वही और सात गुणों को बढ़ाने वाली है, दाल है बाबा कहते सबसे अच्छा खाना कौन सा है, दाल रोटी दाल भात है ना, तो खा लिया बस, बाबा कहते दाल भात सबसे अच्छी है, खा लो चलो बस बाबा की याद में खा ली, तो मेरे लिए अच्छा हो गया, नहीं हो गया तो वो भोजन मेरे लिए बढ़िया हो गया, वो इसी वही मेरी टेस्ट बड के लिए अच्छा है, इच्छा ही नहीं और खाने की, आसक्ति नहीं होती, यही बाबा का प्रसाद है यही मुझे खाना है, इच्छा ही नहीं पैदा होगी कुछ और खाऊं, जाके बाजार में खा लूं या आज ये खा लूं, आज डोसा खा लूं, आज ये खा लूं, डोसा बनाने की मेरे पास साधन ही नहीं है, है ना, समझ रहे मेरी बात, तो ऐसा फिर हमारे अंदर हमारी जीभ की टेस्ट भी बदल गई, तो कर्मेंद्रियां बदल गई, अब इसका ये तो एक तो सुपरफिशियल प्रोसेस, ये तो सुपरफिशियल प्रोसेस हो गया, अब इसका रियल प्रोसेस गहरा प्रोसेस क्या कर्मेंद्र जीत बनने का, मतलब ये तो हमको एफर्ट करनी है हर संकल्प में, ये तो एक तरीका हो गया कि मुरली से हम लोग डेली जो मुरली बाबा की डेली मुरली है उसको हम मनन करें, मनन बार बार रिवाइज करें, चिंतन करें, चिंतन माना मुझे ऐसा, चिंतन माना चिंता लगाना, चिंता तो नेगेटिव है, चिंतन पॉजिटिव शब्द है, तो मुझे ऐसा बनना है जो बाबा ने मुझे कहा, मैं बाबा का नूरे रतन हूं, बाबा का नैनो, बाबा की मस्तक मणि हूं, बाबा मुझे मस्तक में धारण करता है, बाबा मेरी महिमा करता है, तो क्या मैं महिमा के लायक बनूं ना, मुझे बनना है बाबा की महिमा लायक, बनना है कि बाबा मुझे मेरी महिमा करे, बाबा मुझे अपने दिल के पास रखे, वो एवर प्योर, और मैं मुझे गंदे विचार आने चाहिए क्या, मुझे देह के विचार आने चाहिए क्या, मुझे ऊंच नीचे के विचार आने चाहिए क्या, नहीं, सदा शुद्ध विचार, ब्रह्मा बाबा के जैसे विचार थे, ब्रह्मा बाबा की जैसे वृत्ति थी वैसी वृत्ति मेरी होनी चाहिए ना, मुझे ऐसा बनना है, चिंतन किया फिर मंथन, मंथन माना अब मैं उसमें खो जाता हूं, मुझे बनना ही है कैसे भी करके बनना ही है, कैसे बनूं बाबा, तो अब मंथन में क्या होता है, मंथन में दो बातें होती हैं, एक तो हमने जो पीछे जो हमने मुरलियां सुनी ना बाबा की, बाबा समय समय पर बहुत सारी बातें कहता रहता है मुरलियों में, बहुत सारी बातें अगर आप कनेक्ट करें ना सारी मुरलियों में कनेक्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, दूसरा जब हम बाबा से बात करते हैं, जब बाबा से ऐसे बात करें तो गहराई में खोए होते हैं तो हमारा बाबा से कनेक्शन हो जाता है, बाबा हमारे साथ आ जाता है, बाबा की बात, हम बाबा से बात, क्योंकि बाबा की हर मुरली का पॉइंट उसमें चार बातें होती हैं, बाबा की हर मुरली का पॉइंट, एक तो गुह्यता उसमें होती है, गुह्यता माने गहराई होती है, दूसरा उसमें रहस्य होते हैं, है ना, रहस्य होते हैं मतलब सीक्रेट होते हैं उसमें कई, और तीसरा उसमें गुह्यता गोपनीयता, गोपनीय बहुत सारी बातें गोपनीय होती हैं उसमें, ना गुह्य गोपनीय और है गुह्यता, गोपनीय गोपनीय और रहस्य युक्त होती है, और चौथी अमूल्य होता है। तो बाबा की हर बात पे बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता होती है, उसमें हर महावाक्य में 700 करोड़ लोगों के सॉल्यूशंस होते हैं। मेरे लिए उसका अलग मीनिंग हो सकता है, आपके लिए अलग मीनिंग, आपके लिए अलग मीनिंग, हर एक के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो बाबा से फिर मैं पूछता हूं, मंथन माना बाबा से मैं पूछता हूं, बाबा मैं कैसे करूं। बच्चे मेरे बच्चे, मैंने उसको बताया था ना उस दिन ये बात, बच्चे फिर वो पॉइंट याद आएगा, बच्चे इसका मतलब क्या है, बच्चे इसका मतलब ये है, बाबा मैं कैसे करूं, मेरे को तो सारा दिन पेशेंट देखने होते हैं, मैं कैसे करूं, ऐसा कैसे बनूं। बच्चे बच्चे तुम ऐसे इसको ऐसे कर सकते हो, पेशेंट देखते थे ऐसे कर सकते हो, राइट। तो बाबा फिर मुझे टच करता है, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, मक्खन मिल गया कि इस पॉइंट का मेरे लिए ये मतलब है। फिर सिमरण, सिमरण माना अब मैं उसको कार्य में लगाऊं, एक्शन में लेके आऊं। सिमरण माना रिवाइज नहीं होता, सिमरण माना उसको कार्य में लगाना, जो मक्खन मिला निकला उसको कार्य में लगाओ। इसलिए कहते सिमर सिमर सुख पाओ, मतलब जो मक्खन मिला उसको कार्य में लगाया, तो उसको हम बार बार कार्य में लगाते हैं, वो फिर हमारा रिकॉर्ड बन जाता है। ओके, तो ऐसे मनन चिंतन मंथन सिमरण करो सुबह से लेकर शाम तक। कम से कम कितनी बार मुरली रिवाइज करनी चाहिए? बड़ी दादी को जानते हैं ना, दादी प्रकाशमणि को जानते हैं आप सभी। एक दिन दादी जी, मैं सुबह 8 बजे दादी के पास लगभग रोज जाता था, तो दादी के पास जाता, दादी बैठी होती थी। दादी वैसे नॉर्मली बोलती नहीं थी ज्यादा, पर दादी कभी कभी जब मैं वो जब भी अकेला बैठा हुआ, जब आसपास कोई बैठ, दादी तब नहीं कुछ बोलेगी, दादी को अकेला जैसे मैं बैठा हुआ, दादी मुझे एक दिन दादी ने मुझे कहा, गुप्ता जी जानते हो अष्टरत्न किस हिसाब से बनते हैं, 108 की माला में कौन आते हैं? मैंने कहा दादी मुझे तो पता नहीं। दादी कहती है जिनको बाबा और बाबा की मुरली श्वासों श्वास याद रहती है वो बनते हैं अष्टरत्न। बाबा और बाबा की मुरली जिनको श्वासों श्वास याद रहती है कितने, वो बनते हैं अष्टरत्न। एक दिन में कितने श्वास लेते हैं हम बताओ? 14 सांस एक मिनट में, एक दिन दिन में दिन के समय लेते हैं, और 10 सांस लगभग रात को लेते हैं एक मिनट में। टोटल सांस देखो तो 16,000 सांस बनते हैं हमारे एक दिन में। एवरेज सांस कितने बनते हैं? 16,000। तो मतलब सारा दिन दिन रात जिनको बाबा याद रहता है श्वासों श्वास और बाबा की मुरली। देखो दादियों को आप कभी पूछो, दादी जानकी को आप देख लो, आप जब जाओ उनके पास कोई ना कोई बाबा की मुरली का पॉइंट सुनाएंगे, बाबा की बात सुनाएंगी, बाबा ने ऐसे किया, बाबा ऐसे थे, बाबा वहां बैठी थी, वहां पर बाबा आए, वहां पर ऐसा हुआ। शाम को क्लास कराती हैं, वो भी उनमें भी वही बात, कभी चले जाओ दादी के पास, बाबा या बाबा की साथ का अनुभव बताएंगे, कुछ और नहीं बताएंगे, और इधर उधर की बात नहीं करती हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बड़ी दादी का भी ऐसे था, मधुबन ऐसे था नहीं था, बाबा और बाबा की मुरली की बातें, और कुछ बात होती नहीं थी बाबा दादी के साथ। कुछ भी बात हो मुरली लेके बैठ जाओ, दादी मुरली तुरंत, अच्छा हाँ तबीयत खराब थी तो भी दादी को, दादी मुरली सुननी है, अच्छा सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कभी मुरली के लिए नानी करेंगी। तो मतलब ये है अष्टरत्नों की निशानी। और जो 108 की माला में कौन आते हैं, जो 108 की माला में आना चाहते हैं हाथ उठाओ। अभी मैं होमवर्क बताऊं कैसे, दादी ने जो बताया था मैं आपको बताऊंगा, ठीक, उतना पुरुषार्थ करना है। जो दिन में 100 बार मुरली को रिवाइज करते हैं वो 108 की माला में आते हैं। जो 100 बार मुरली को रिवाइज, दादी ने कहा 108 की माला में आना है क्या? मैंने कहा दादी जरूर आना है, इसलिए तो मैं यहां पे मधुबन में आया। तो दादी कहती अच्छा तो पुरुषार्थ बताओ क्या है। मैंने कहा दादी बताओ ना। दादी कहती बाबा, बाबा कहते बच्चे 100 बार कम से कम मुरली के पॉइंट्स आपको याद आने चाहिए, बाबा और बाबा के मुरली के पॉइंट 100 बार कम से कम दिन में याद आने चाहिए। मैंने दादी कैसे होगा ये 100 बार कैसे याद आएंगे? दादी कहते कितने घंटे सोते हो? मैंने कहा दादी 6 घंटा, बाकी कितने बचे? 18 घंटा, बाकी 2 घंटा। मैंने कहा दादी और भी तो काम होते हैं। अच्छा ठीक है, वो 2 घंटे उसके भी दे, तो बाकी 16 घंटे हुए ना, तो 16 घंटे में हर घंटे में लगभग 6 बार याद आनी चाहिए। कितनी बार याद आनी चाहिए? 6 बार याद आनी चाहिए। ठीक है, कर सकते हैं 1 घंटे में 6 बार। सारी मुरली नहीं, मुरली का एक पॉइंट निकाला। मुरली का जैसे होता ना, मैंने हमेशा ये कहता हूं, मैं मुरली को बोलता हूं कि मुरली जैसे मुरली क्या है, बाबा का प्रेम पत्र है ना हमारे लिए। तो प्रेम पत्र कहां रखते हैं? वैसे दिल के पास रखते हैं ना, दिल के पास रखते हैं। और फिर पढ़ते कब हैं? कब पढ़ते हैं? जब आप पहले आसपास देखते कोई है तो नहीं, फिर देखते फिर यूं निकालते चुपचाप है ना, और देखते एक लाइन पढ़ते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर चुपचाप छुपा लेते हैं, फिर देखते थोड़ी देर में अभी आसपास कोई है तो नहीं, फिर निकालते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर उतनी बाकी देर उतनी इसी को सोचते रहते हैं, मेरे को ये, मेरे लिए सोचता है मेरा प्रेमी, मेरे लिए सोचता है नहीं, उसी में खोए रहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, हथ काड़े दिल याड़े, मत ऐसी लगन जिसको होती है ना वो 108 की माला में आती, विनाश के डर से याद करते हैं वो नहीं, वो 108 की माला में नहीं आते। ठीक है, तो इतना हमको ध्यान करना है। दूसरी बात, अभी जो है हमको फिर 16,000 की माला में कौन आते हैं, राजा रानी 16,000 ही बनते हैं, वो कितनी वो कौन आएंगे, एक दिन में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है ना, दोपहर में ना 3 घंटे 3 घंटे 6 घंटे हो गए ना, तो 12 बज गए तो दोपहर हो गई ना, दोपहर हो गए, ऐसे हमारे टोटल 8 पैर होते हैं, जो कम से कम दिन में 8 बार मुरली को रिवाइज करते हैं। सारी मुरली नहीं कह रहा हूं मैं, मुरली के पॉइंट, जैसे एक पॉइंट देखा उसका मनन चिंतन मंथन सिमरण किया, फिर दूसरा पॉइंट देखा उसका मनन चिंतन मंथन सिमरण किया, कभी वरदान, कभी स्लोगन, कभी कोई और लाइन, कभी धारणा का कोई बात, एक एक लाइन वही बुद्धि में चलती है। 8 बार जो कम से कम मुरली को रिवाइज करें, 8 बार करोगे 16,000 में आ जाएंगे, राजा रानी बनेंगे, है ना। और 9 लाख में कौन आते हैं, प्रजा कौन बनती है, प्रजा भी फर्स्ट क्लास होती है, जो कम से कम रोज एक घंटे सुबह सुबह जो क्लास का टाइम है 6 से 7 होता है, 7 से 8 होता है, वो क्लास में आके मुरली सुनती है, इंटरनेट पे नहीं। कई लोग कहते हैं इंटरनेट पे मुरली सुन लेते हैं, मोबाइल में मुरली देख लेते हैं, मुरली मोबाइल में सुनते हैं। मोबाइल पे नाश्ता करते हो क्या आप, मोबाइल पे तो नाश्ता नहीं होता ना, तो हमें जो है मुरली भी जो है हमारी जो है वो क्लास में, वो रिकॉर्डिंग रूम होता है वहीं जाके वो रिकॉर्ड होती है, शक्ति भी जो भी बहन मुरली सुनाती है, भाई सुनाता है, उसके द्वारा बाबा वो शक्ति भी भरता है धारण करने की। तो हमें 16,000 की माला एक दिन, अगर कोई एक घंटा लेट होता है मुरली में तो बाबा कहता है एक जन्म लेट हो जाता है। ये है ना मुरली, पढ़ा होगा ना मुरली में, जो क्लास में एक घंटा लेट वो सत्युग का एक जन्म लेट हो जाएगा। ठीक है, दो घंटा लेट तो 2 जन्म लेट, 3 घंटा लेट तो 3 जन्म लेट, है ना। तो मतलब इसका मतलब जो बाबा को प्रायोरिटी देते ना पहले, वो फिर 108 की माला, वो फिर आपका 9 लाख में आएगा, मतलब पहले जन्म में आएगा। तो बात चल रही थी कर्मेंद्र, चलो टाइम वैसे हो गया, तो कर्मेंद्री जीत बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने दिल में जितना फिर हम अपनी जो अपनी नियम के अनुसार अमृत वेला मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरण, और सोने के पहले ऑडिट करेगा, ऑडिट माना एक लेटर लिख के जो भी हमसे गलतियां हुई सारे दिन में चार्ट भरेगा, फिर फिर मुरली पढ़ो सोने के पहले मन को प्लेन बनाने के लिए, फिर बाबा को याद के सो जा, क्योंकि अच्छी नींद आने वाले को ही सुबह अमृत वेला अच्छा होगा। और आज की जो भी गलतियां हुई, अगर मैं उस गलती को बिना एक्सेप्ट किए, बिना उसको बाबा को दिए सो गया, तो मेरी नींद अच्छी नहीं होगी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा, नींद गहरी नहीं आएगी, तो सुबह हम उठेंगे ना थके थके उठेंगे, और अमृत वेला योग अच्छा नहीं होगा। तो और सोना चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए, कम से कम हमें जहां तक हो सके 10 बजे से पहले पहले सो जाना चाहिए, 10:30 नहीं 9:30 सो जाना चाहिए, जहां तक हो 9:30 10 तक सो जाना चाहिए, और फिर हमें कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए, और तब 3:30 से 4:15 उठ जाना चाहिए, और उठ के फ्रेश होके मुंह हाथ धो के ब्रश करके बैठना चाहिए। और अगर हम उठते ही गुड मॉर्निंग करके बाबा की याद में बैठ जाते हैं और अच्छी रात को नींद होती है, तो हमारा अमृत वेला पावरफुल होता है। और अमृत वेले के समय हम फिर वही क्या करते हैं, हम विक्रम विनाश कर सकते हैं। विक्रम विनाश माना जो पुरानी मेमोरीज है हमारी, जितनी भी विक्रम की मेमोरीज है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मेमोरीज है, वो हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज होती है। और जब हम ऊपर हमारे जब उठते हैं तो हम दो तीन फ्रीक्वेंसी पे उठते हैं, डेल्टा रिदम माना 2-3 फ्रीक्वेंसी, और जैसे ही हम बाबा को याद करना शुरू करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी जब 2 होती तो हम सूक्ष्म वतन में बाबा के पास पहुंच जाते हैं, और जब हम एक हो जाए खाली बाबा रह जाता है तो हम परम धाम में पहुंच जाते हैं। और जब बाबा की याद में खो जाते हैं तो हमारी पुरानी फ्रीक्वेंसीज की जो हाई फ्रीक्वेंसीज की मेमोरी डिलीट होने लगती है, उसे कहते हैं विक्रम विनाश। विक्रम विनाश माना आज जैसे कल मैंने कोई व्यक्ति मिला था, मुझे गुस्सा उसको देख के गुस्सा आया था, उसको देख के मुझे थोड़ा सा विचार चले थे, आज व्यक्ति वो मुझे मिलेगा आज उसको देख के गुस्सा नहीं आएगा, उसको देख के याद ही नहीं आएगा इसने मुझे कल क्या कहा था, ये निशानी है कि विक्रम विनाश मेरा उस व्यक्ति के साथ हुआ। ठीक है, उस व्यक्ति को देख के मेरे संकल्प नहीं चलेंगे, उस गलत काम करने की आज इच्छा नहीं होगी, कल हुई थी, आज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो जैसे जैसे विक्रम विनाश होते जाएंगे तो आत्मा की एनर्जी, जो आत्मा के साथ एनर्जी है, वो मेरी कर्म इंद्रिय में पहुंचेंगी। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां पहुंचेंगी। पहुंचेंगी तो कर्म इंद्रियों को पोषण मिलेगा, और पोषण मिलेगा तो मेरी कर्म इंद्रियां क्या होंगी, तब वो उनकी चंचलता समाप्त होगी। तब आंखें मांगेंगी नहीं मुझे ये देखना है, जीभ मांगेगी नहीं मुझे ये खाना है, कान कहेंगे नहीं मुझे ये सुनना है, कान कहेंगे नहीं मुझे बाबा की मुरली सुननी है। बाबा कहते हैं बाबा से सुनो, बाबा से खाओ, फिर मुझे तो ये सिंपल भोजन ही मेरे लिए अच्छा है, राइट। तब हमारी कर्म इंद्रियां हमारे वश में होंगी और तब हम मायाजीत बनेंगे, तब हमसे विकर्म बार बार नहीं होंगे, राइट। और जब मायाजीत बन जाएंगे तो प्रकृति जीत बनेंगे। प्रकृति माने शरीर, सबसे पहले शरीर पांच तत्वों का बना हो ना, ये हमारे जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, जो अंग हैं हमारे, और लगभग 70% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है। अगर आप 70 किलो के हैं तो लगभग 48 किलो उसमें पानी है, ठीक है, कितना पानी है, 48 केजी पानी है उसमें। और वायु, हमारे हर सेल में वायु भरी हुई है, फेफड़ों में तो वायु है ही, हर सेल में ऑक्सीजन भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भी भरी हुई है, ठीक है, फिर वो वायु है। फिर उसमें अग्नि, अग्नि कौन सी है, अग्नि है हमारे हार्मोन्स की, हार्मोन्स होते हैं ना हमारे, जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, पिट्यूटरी, पीनियल से, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास, एडिनल, और जो जूसेस निकलते हैं खाना पचाने के, ये हार्मोन्स और एंजाइम अग्नि है, राइट, जिससे हमारे शरीर में टेम्परेचर मेंटेन रहता है और खाना पचता है, हजम होता है, ओके। और आकाश है हमारी बुद्धि, आकाश है हमारा दिमाग, हमारी सोचने की शक्ति, जो दिमाग जो हार्डवेयर है ना हमारा ब्रेन, ये आकाश है। ये आकाश कनेक्टेड है किससे, आत्मा से, आत्मा इस एनर्जी को रिसीव करती है इसके द्वारा, और फिर सारी बॉडी को, और ये फिर परमात्मा से कनेक्टेड है, आत्मा, आत्मा यहां रहती है ना, और उससे परमात्मा से कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली जो हमारे पांच सातों अंग है, सॉरी आठों अंग है, ये जो है बेसिकली हमारे इस तरह से पांचों तत्वों से कनेक्टेड है। अगर ये पांचों चीजें हमारे, ये हमारे पांचों तत्व मतलब आठ अंग हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो ये प्रकृति जो है ना, ये प्रकृति जो हमारे बाहर की प्रकृति, ये भी हमारे वश में आ जाएगी। सबसे पहले मुझे इस प्रकृति पर कंट्रोल करना है, अपनी कर्म इंद्रियों पर, अपने अंगों पर कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल होगा, जब इनको ज्ञान पहुंचेगा तो, समझ पहुंचेगी तो, समझ से काम करेंगे सब हाथ पैर और सब कर्म इंद्रियां, इस समझ, एबीसीडी की समझ, किसी से मिले इस भाव से ना मिले ये व्यक्ति ऐसा है नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, किसने मेरी महिमा की उसको मैं जाके बहुत उसकी महिमा करनी शुरू कर दूं, उसके पास ही बैठ जाऊं, वो भी गलत है, वो भी पाप है, किसी के प्रभाव में आऊं वो भी पाप है। बल्कि सबसे बड़ी पवित्रता इस समय ब्राह्मणों की कौन सी है, हमारे अंदर विकार नहीं रहा, अभी काम विकार नहीं रहा, किंतु सबसे बड़ी अपवित्रता कौन सी है, लगाव, किसी भी व्यक्ति के प्रति लगाव रखना है अपवित्रता है, कोई भी हो, देहधारी, इवन घर में भी कोई व्यक्ति होते हैं उनके प्रति लगाव रखना गलत बात, वो भी अपवित्रता है। झुकाव, उसकी बात सुनूं, उसकी सुनूं, उससे बात कर लूं, कोई मुझे अच्छा लगता है, ये भी अपवित्रता है। प्रभाव, किसी व्यक्ति के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है। एक व्यक्ति, एक का ही प्रभाव होना चाहिए सर, शिव बाबा का, चाहे लौकी को चाहे लौकी को, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। सारा लगाव उससे रखो, सारा झुकाव उससे रखो, सारा प्रभाव उससे रखो, और किसी व्यक्ति से टकराव रखना, ब्राह्मण कभी किसी से टकराव नहीं रख सकता है, किसी भी व्यक्ति से, चाहे आपकी गिलानी करने वाला हो, कोई भी हो, किसी से टकराव मत रखो, सबके प्रति सच्चा प्यार होना चाहिए, तो वो है पवित्रता, ठीक है। जब ऐसी पवित्रता हमारे अंदर होगी तो बाबा हमारे दिल में आता है, ओके, तब ऐसा, तब बाबा हमारे दिल में, माना हमारी कॉन्शियसनेस में बाबा आ जाएगा, और बाबा आएगा तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारी विवेक, हमारा ईश्वरीय हो जाएगा, बुद्धि दिव्य हो जाएगी, चित्त हमारा शांत हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, और तब मेरे अंदर जो स्मृतियां हैं कौन सी जागृत हो जाएंगी, तब मेरी स्मृतियां जागृत होंगी, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की स्मृतियां जागृत होंगी, फरिश्ता स्वरूप की स्मृतियां अंदर रिकॉर्ड है वो जागृत हो जाएंगी, और देवता स्वरूप की स्मृतियां जागृत होंगी। जब वो मेरे ब्राह्मण स्वरूप, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, मतलब जब मेरा कंप्लीट ब्राह्मण स्वरूप जागृत हो जाएगा, फरिश्ता स्वरूप जागृत हो जाएगा, तो मेरी वृत्ति फिर फरिश्ता जैसी हो जाएगी, तब भावना फरिश्तों जैसे होगी, तब मेरा क्या होगा, तब संकल्प वैसे चलेंगे, तब मेरे चेहरे और चलन से क्या होगा वो दिखाई देगा। ओके, तो आई थिंक मैं समझता हूं अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा प्रकृति पर, ये शरीर रूपी प्रकृति पर भी हमारा कंट्रोल होगा और धीरे धीरे हमारे आसपास की प्रकृति जो है वो शुद्ध होती जाएगी, ठीक है, और उसके द्वारा हमारा सारा वायुमंडल परिवर्तन होता जाएगा और तब हम क्या बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, ठीक है। ओम शांति।
थैंक यू सतीश भाई जी, आज से बिलव भी सब चेंज हो जाएंगे, मुरली के आधार से ही तो विकर्म हो गई नहीं, कर्म इंद्रिया जीत और माया जीत बन ही जाएंगे। ओम शांति। अब एक मिनट बाबा को याद करके जाएंगे।